संबंध, जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उगताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। व्याख्या, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव नहीं, ऐसे दुख रूप शरीर संसार के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितने ही दृढ़ता से संयोग मान ले और कितने ही लंबे समय तक संयोग मान ले तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है और स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग ही यहां योग समझना चाहिए। यहां दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे ये असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु मूल में ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता। कारण कि यह योग मन, बुद्धि और प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है, इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ, प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यह योग संगीतम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्चते कहकर समता को ही योग बताया है। यहां साध्य रूप समता का वर्णन है और वहां 2:48 में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्व है एक ही है, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग दर्शन पहला पाद दूसरा सूत्र। और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, वही पहला पाद तीसरा सूत्र। परंतु यहां भगवान ने तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इन पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है जो स्वतः सिद्ध है। यहां तम कहने का क्या तात्पर्य है कि 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया। उस ध्यान योग का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया। और जब उसी योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई है उसी का यहाँ तम पद से संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है ऐसे योग का उद्देश्य रखकर साधक को न उगताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मुझे तो योग की ही प्राप्ति करनी है ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा का तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया पर सिद्धि नहीं हुई, इसकी सिद्धि कब होगी कैसे होगी, इस तरह कभी उकतावे नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाए कितने ही जन्म लग जाए कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाए तो भी मुझे तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मुझे अनेक जन्म हुए पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। परिशिष्ट भाव, सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमसे अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना यही अज्ञान है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का तो वियोग होता है पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। मनुष्य चाहता है संयोग पर हो जाता है वियोग, इसलिए संसार दुख रूप है, दुखालयम अशाश्वतम। कुछ चाहना रहने से दुखों का संयोग होता है, कुछ भी चाहना न रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा के साथ योग होता है। परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है, इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का नाम ही योग है। वह नित्य योग सब देश में है, सब काल में है, सब क्रियाओं में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। तात्पर्य यह है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ ही नहीं है, नहीं होगा ही नहीं और हो सकता ही नहीं। परंतु असत शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता, दुख रूप असत के साथ माने हुए संयोग का वियोग होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा। योग की परिभाषा भगवान ने दो प्रकार से की है। समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते। दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। चाहे समता कह दे चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दे, दोनों एक ही है। तात्पर्य यह है कि समता में स्थित होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम पहली स्थिति है और समत्वम योग उच्यते बाद की स्थिति है, जिसमें नैष्ठिक की शांति, परम शांति अथवा आत्यंतिक सुख की प्राप्ति है। समता की प्राप्ति भी स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है, निवृत्ति भी उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति का नाम भी योग है। वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संयोग से होने वाले जितने सुख हैं वे सब दुखों के कारण हैं और दुख पैदा करने वाले हैं। 5:22 अतः संयोग में ही दुख होता है, वियोग में नहीं। वियोग माने संसार से संबंध विच्छेद में जो सुख है उस सुख का वियोग नहीं होता, क्योंकि वह तो नित्य है। जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है। परमात्म तत्व है रूप और संसार नहीं रूप है। एक मार्मिक बात यह है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखता है। कारण कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे, तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला हुआ होगा, परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है, इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा, परंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्म तत्व स्वतः शेष रह जाएगा।